पिशाच वो होता है जो कोई इंसान हो, उसकी कोई इच्छा रह गई हो और वो उस इच्छा पूरी होने से पहले वो अगर मर जाए। इसमें से सबसे खतरनाक जो होते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म पिशाच। तो ब्रह्म पिशाच जो है वो एक तीन चीज का मतलब मिश्रण है,
यक्षिणी है, साक्षिणी है और अचेरी है, ये अलग है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि ये जो एंटिटी है ये पॉजेस कर लेती है जीवित इंसान को, औरतों को,
शादी के तुरंत बाद अगर उसकी मौत हो जाए तो वो फिर शाक्षुनी में कन्वर्ट हो जाती है। मेनली शाक्षुनी जो है वो उसी फैमिली को टारगेट करती है जिसमें उसकी शादी हुई हो। तो भूत क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फोकलोर भूत वो होता है जो एक इंसान मरा हो, उसको अपना मोक्ष नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली, तो वो यहाँ रह जाएगा, उसकी कोई इच्छा अपूरी है तो वो यहाँ रह जाएगा और वो भूत बन जाता है। इंडिया में एक ऐसी जगह है जिसे बर्थ प्लेस ऑफ ब्लैक मैजिक कहा जाता है।
क्या भूत भगाते हैं?
नहीं, भूत नहीं भगाता।
नील जी, एस्ट्रो पंडित शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी तक हमने हॉन्टेड चीजों के या भूत प्रेत का एक ही पॉडकास्ट किया था, आज आपके साथ दूसरा करेंगे। आपका एक्सपीरियंस काफी वैरायटी में है और काफी सालों का है। आपने लगभग 10 किताबें लिखी हैं, गेस
14 से ऊपर हो गई
14 से ऊपर हो गई हैं। सो शुरुआत कहाँ से हुई थी इस जर्नी की, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इनकी बुक्स लिखने के, इसमें इंटरेस्ट कैसे आया आपका?
सबसे पहले शुक्रिया कि मैं इस पॉडकास्ट पर हूँ, बहुत ही आपका फ़ैन भी हूँ और आज आपसे ये भूत प्रेतों की जो बातें करने वाले हैं उसको बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि मतलब क्या क्या कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपके ऑडियंस को सुनाऊँ। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो ऑथर्स हैं, लेखक जो हैं, हम कहानियाँ नहीं ढूंढते हैं, हमारी कहानियाँ हमको ढूंढ लेती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मैं ये दिमाग में लेकर नहीं सोचने मतलब चल पड़ा था कि ठीक है मुझे हॉरर लिखना है, लेकिन ऑथर बनना था। राइटिंग का शौक पहले से था, बचपन से था। मेरे घर पे एक बहुत अच्छा माहौल था, बुक्स भरे पड़े थे। मेरे डैड एक बहुत ही अजीब सा काम करते थे फ्रीलांसिंग में, और वो था सबटाइटल्स, मतलब हिंदी फिल्म्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। तो जब वो करते थे तो मैं भी उनके साथ बैठकर, बच्चा था मैं तो 7th-8th स्टैंडर्ड में होऊंगा, बैठकर देखता था कि वो किस तरह से ये कर रहे हैं। तो वो स्क्रिप्ट्स पढ़ पढ़ कर एक कहानियाँ कैसे बनती हैं उसका भी आइडिया मुझे उसी टाइम से होने लगा था। मतलब एक तरह का एडुकेशन ही हो गया। और कोई भी किताब पढ़ने के लिए हमारे घर पर रोक नहीं था, चाहे आप मिस्ट्री पढ़ो, डिटेक्टिव पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, हॉरर पढ़ो, कुछ भी। और मैं पढ़ता था बहुत, क्योंकि 90s का बच्चा हूँ मैं, तो उस टाइम पर कुछ था नहीं दूसरा डिस्ट्रैक्शन। पढ़ पढ़ कर मैं हॉरर पर भी पहुँच गया और ड्रैक्यूला पढ़ डाली, फ्रैंकेंस्टाइन पढ़ डाली, ये सब कहानियाँ पढ़कर बहुत मज़ा आया कि वो उस तरह की हवेली या तहखाने जो भी होते थे उसमें वो कहानी सेट है, कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि आपको पता नहीं चलता कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो ये मुझे फैसिनेशन पहले से था, लेकिन मैं बहुत डरपोक बच्चा भी था एट द सेम टाइम। मतलब बुक्स पढ़ते समय मुझे बहुत ही आनंद मिलता था, लेकिन अदरवाइज घर बड़ा था, मुंबई का हूँ मैं, और वहाँ मतलब सन्नाटा हुआ करता था बहुत। और मैं बहुत इमेजिनेटिव था, मतलब मेरी कल्पना शक्ति उस टाइम पर भी बहुत थी। मतलब अगर मैं अंधेरा देखूँ तो मुझे वो अंधेरा अंधेरे जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा दिखेगा कि उसमें कोई है छुपा है। और अगर कोई हादसा हो गया उस बिल्डिंग में, कोई अगर मर गया हो या ऐसा हो, तो मेरा दिमाग और आगे चलकर ये सोचता था कि उसका इमेज उसमें है, मेरी तरफ आ रहा है। तो इस तरह से मेरे घर में एक रूम बंद पड़ा रहता था, उसका सीलिंग था। और मेरे दिमाग में ये पता नहीं कहाँ से कल्पना घुस गई कि उस सीलिंग में कोई आदमी है, और अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो दीवार फोड़ कर बाहर आकर मुझे भी दीवार के अंदर ले लेगा। और इस डर से मैं बहुत देर तक रहा, मैं उस रूम में नहीं जाता था, किसी को बोलता नहीं था कि मतलब मैं क्यों नहीं जा रहा उधर, लेकिन ये था। तो इस तरह से जो फोबियाज थे इनको लेकर मैं बड़ा हुआ। और फिर जब मैंने अपनी कहानियाँ लिखी तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कहीं ना कहीं से ये मेरे स्टोरीज़ में आ गए और वो हॉरर स्टोरीज़ बन गई।
मुझे लगता है आप 80s के हो या 90s के हो, कुछ कुछ डर सबके कॉमन थे कि कोई हॉरर मूवी देख लेते तो बाथरूम जाने से डर लगता था वो। और कई बार तो ऐसा भी होता था मेरे बेड के नीचे कोई है, और बेड को झांक नहीं सकते आप नीचे क्योंकि आपको लग रहा हो आपको देख लेगा। तो ये एक्सपीरियंसेस आई गेस बच्चों के में कॉमन ही रहते थे। सो जब आपने पहली बुक लिखी आपने 14 बुक लिख दी है, कुछ ऐसा हुआ बुक लिखते समय कि जो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहो?
मेरा एक तरीका है लिखने का, एक स्टाइल। मैं जब अपना बुक आउटलाइन करता हूँ या प्लॉटिंग करता हूँ उसका, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बुक लिखने में, तो मैं अपने घर पर ये नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत शोरगुल होता है, आवाज़ होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक दूसरे शहर में जाता हूँ या दूसरे गांव में जाता हूँ या जो भी इस तरह की जगह पकड़ता हूँ जिसका कोई एक रेप्यूटेशन हो कि यहाँ कुछ है भूत प्रेत के जैसे, कुछ हॉन्टेड जैसा, और वहाँ मैं एक रूम लेकर, छोटा सा होटल रूम भी चलेगा मेरे लिए, मैं अपने आप को वहाँ बंद कर देता हूँ, वहाँ लिखने को स्टार्ट करता हूँ। तो वहाँ जो आइडियाज़ में भी फ्लो होती है वो आइडियाज़ घर पर नहीं हो पाती। और जब मैं बैठकर, मतलब ऐसे जगहों पर जाकर, क्योंकि हम अगर उस जगह में हैं तो वो जगह को एक्सप्लोर भी करेंगे, वहाँ क्या है, दिन भर कहानियाँ सुनेंगे क्या हो रहा है, और रात को लिखना, तो उस टाइम पर अपने मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है। जैसे मैं एक बार मैं लिख रहा था कोई कहानी, शायद चंडीगढ़ का ये होटल था, सब शांत था एकदम, सेक्टर 17 था, लेकिन थोड़ा दूर था मार्केट से। बैठकर मैं आराम से लिख रहा था और रात हो गई, कब पता भी नहीं चला, 10 बजे स्टार्ट किया था, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, और लिखते लिखते मुझे ऐसा मतलब फील होने लगा कि कोई देख रहा है पीछे से, और 2-3 बार मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक आभास जैसा जो होता है कि एक बहुत ही लंबा सा आदमी खड़ा है, और एकदम इंग्लिश में कहते हैं पेरिफेरल विजन, मतलब जो साइड की नज़र है, उससे मुझे दिखा, घूम कर देखा तो वो चला गया था, लेकिन ऐसा फील हुआ कि मतलब कोई था, कोई देख रहा था। और ऐसे फीलिंग जो होता है ना जब आपको आता है, तो रोंगटे खड़ा होना ये तो हम बोलते ही हैं, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा जाता है, मतलब बहुत डीप होता है ये फीलिंग, आपकी पूरी जो मनस्थिति है पूरी बदल जाती है, आपको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ था, और फिर एट दैट मोमेंट समझ में नहीं आता है कि ये सच था या नहीं था। मैं तो लैपटॉप बंद कर उस बात सो गया, सुबह उठकर जब सब ठीक हुआ तो मैंने थोड़ा पूछा कि मतलब क्या था वगैरह, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। मेरे थोड़े पैरानॉर्मल रिसर्च करने वाले दोस्त भी हैं, उनसे भी मैंने बात किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक कर्टन होता है हमारे इर्द गिर्द, हमारा जो डायमेंशन है वहाँ हम जीते हैं, वहाँ हम इंसान हैं या जो भी है, लेकिन एक ऐसा कर्टन है जो हम देख नहीं सकते, और वो कर्टन के पीछे बियॉन्ड द व्हील ये सब शक्तियाँ होती हैं जो पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। और जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, जैसे आप हॉरर लिखते हो, हॉरर लिखते समय आपका पूरा ऑरा अलग हो जाता है, आप कुछ एकदम नेगेटिविटी में घुसकर आप ये कहानियाँ निकाल रहे हो अपने, और उस दिन मैं भी वशीकरण का ही सीन लिख रहा था, तो जब इतना इंटेंस आपका काम हो रहा होगा तो उनको पता चल जाता है कि उनके बारे में कुछ लिखा जा रहा है, एक तरह का जैसा आप बुलावा दे रहे हो, और वो कर्टन चीर कर देखने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी आपको ये फील होगा।
ये मैंने भी देखा है, जैसे अकल्ट गुरुकुल पे हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, तो जैसे आज किसी प्लेनेट की बात करी है, जैसे आज हमने गुरु जुपिटर की बात करी, क्लास में डिस्कशन किया, तो वो जुपिटर अपनी प्रेजेंस दिखाने आता है, कोई पंडित आएगा, कोई बिच्छू खाएगा जो पंडित के वेश में होगा, कहीं ना कहीं से कोई बुक मिल जाएगी, सो इस तरह से जिस चीज़ पर भी हम रिसर्च करते हैं वो अपनी प्रेजेंस ज़रूर दिखाती है हमें। अब हिंदुज़म में देखा जाए तो बड़े अलग अलग नाम हैं, भूत भी है, प्रेत भी है, पिशाच भी है, आपने किताब लिखी यक्षिणी, ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये क्या एक ही हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम हैं या इनके कॉन्सेप्ट्स अलग हैं?
नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग हैं, इनकी अपनी अपनी ओरिजिन स्टोरीज भी होती है कि मतलब ये जहाँ से आते हैं उस हिसाब से। अभी अगर आपने पिशाच की बात की, तो पिशाच ही इतना फैसिनेटिंग कैरेक्टर है खुद में, उसके बहुत सारे प्रकार भी होते हैं कि किस तरह के प्रकार होते हैं। अभी एक पिशाच वो होता है जो कोई इंसान हो, उसकी कोई इच्छा रह गई हो और वो उस इच्छा पूरी होने से पहले वो अगर मर जाए, और वो मरे भी तो बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, वॉयलेंट तरीके से, किसी ने उसका मर्डर किया हो या कुछ ऐसा हो, तो वो इंसान एक पिशाच में बदल जाता है और वो दुनिया में रहता है। एक तरह का पिशाच वो है जो शापित होता है, जिसने कुछ पाप किया हो या कुछ ऐसा हो तो उसको एक शाप लग जाता है किसी का कि तुमने हमारा घर उजाड़ा या तुमने कुछ ऐसा किया हमारे साथ, तो ये लोग भी हैं, वो ऐसा मान्यता है कि वो भी पिशाच बन जाते हैं। एक तरह के पिशाच वो होते हैं जो दैवी पिशाच होते हैं, मतलब जो भगवान, जो हम देव जिसे कहते हैं, तो देव इन पिशाचों की निर्मिति करते और उनको भेज देते हैं दुनिया में कि मतलब ये हमारा काम है, ये पूरा करके आ जाओ। और उसी तरह से दानव पिशाच भी होते हैं, मतलब दानव भी पिशाच बना सकते हैं और वो पिशाच को धरती पर भेज सकते हैं। तो अलग अलग किस्म के पिशाच होते हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी एक ही है, तबाही मचाना, लोगों को डराना, और अलग अलग तरीके से जो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है या उनका जो मिशन है वो कंप्लीट करने के लिए वो यहाँ धरती पर मंडराते रहते हैं। इसमें से सबसे खतरनाक जो होते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म पिशाच। तो ब्रह्म पिशाच जो है वो एक तीन चीज़ का मतलब मिशन है। एक तो है वो ब्रह्मदेव से कनेक्टेड है, तो मतलब उनको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत है, वो ब्राह्मण होते हैं, वो इंसान भी होते हैं एट द सेम टाइम, और वो पिशाच भी बन जाते हैं। वो पिशाच इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ब्राह्मण होकर भी उन्होंने कुछ ऐसा पाप किया हो जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो, या उन्होंने कुछ बहुत ही ऐसा पाप किया है जो बहुत ही गलत है, उस वजह से उनको शाप मिलकर वो पिशाच बन जाते हैं। अब पिशाच होकर भी उनके पास वो सब स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो इसीलिए ये पिशाच को हराना बहुत मुश्किल है। और अगर ब्रह्म पिशाच ने किसी को पोजेस कर लिया तो उसको निकालना भी बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह की कहानियाँ जो हमारे मतलब अपने हिस्ट्री में है, अपने माइथोलॉजी में है, ये कहानियाँ हैं जो मुझे फैसिनेट करते हैं हॉरर लिखने के लिए। यक्षिणियों की भी अगर बात करें तो यक्षिणियों का भी जो ओरिजिन पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो रावण और कुबेर की कहानी तो सबको पता है, ये दोनों भाई थे, और कुबेर वो था जो मतलब सीधा साधा भाई जैसा था, रावण असुर था और रावण ने लंका हड़प कर लिया। कुबेर जो था वो फिर भी धन का देव है, वो सारी दुनिया की दौलत उसके पास है लंका को छोड़कर। और कुबेर को जब रावण ने इस तरह से दगा दिया तब कुबेर ने जाकर अपना एक खुद का किंगडम बना लिया जिसको अलकापुरी कहते हैं, जो हिमालय में है। और ऐसा कहा जाता है कि कुबेर अभी भी वहाँ राज करता है, अभी भी वहाँ है। तो इस अलकापुरी में सारे के सारे, जिनको हम इंग्लिश में डेमीगॉड्स बोलते हैं, जो मतलब इंसान भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, ऐसे जितने भी बीइंग्स हैं, ऐसे जितने भी क्रीचर्स हैं, वो इस अलकापुरी में रहते हैं और वो कुबेर की प्रजा है।
ओके
तो इसमें आते हैं यक्षिणी, गंधर्व, पिशाच भी। तो ये सारे जो हैं, जो दैत्य लोग हैं, ये सब हैं अलकापुरी में। अब यक्षिणियों को, अगर यक्षिणियों की बात करें तो यक्षिणियाँ जो होती हैं वो इंसान से बड़े हैं लेकिन अप्सराओं से कम हैं, तो वो भी एक तरह के डेमीगॉड हुए। यक्षिणियाँ हिंदू माइथोलॉजी में एक, उनका एक फिक्स्ड नंबर है कि 36 यक्षिणियाँ हैं, कंप्लीट 36 यक्षिणियाँ हैं, उससे एक भी ज़्यादा नहीं, एक भी कम नहीं। और ये यक्षिणियाँ रहती हैं अलकापुरी में, वो सब कुबेर की दासियाँ हैं। उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कुबेर ने जगह जगह पर अपना धन छिपाया है धरती पर। कहा जाता है कि जो अशोक का पेड़ होता है, साल का पेड़ होता है, उस पेड़ की टहनियों में ये कुबेर का धन, मतलब थोड़ा थोड़ा करके धन संपत्ति वहाँ छिपी हुई है, गड़ी हुई है। और उसकी रक्षा करने के लिए ये यक्षिणियों को धरती पर आना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मतलब वो सब धन उसी तरह से सुरक्षित है। अब यक्षिणियाँ जो हैं उनको भी एक शक्ति है उनके पास, और वो शक्ति ये है कि वो वरदान दे सकती है यक्षिणियों को खुश करने के लिए। इंसान भी कहते हैं यक्षिणी साधना, तो अगर ये यक्षिणी साधना बहुत ठीक तरह से हुई, ये भी की जाती है अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर या साल के पेड़ के नीचे बैठकर, क्योंकि वहाँ यक्षिणियाँ आती जाती रहती है, तो वहाँ बैठकर ये साधना की जाती है। और अगर सब ठीक हुआ तो वो पर्टिकुलर यक्षिणी आएगी 36 में से और वो आपको वो वरदान देकर चली जाएगी। अब इसमें ये वरदान क्या हो सकता है, ये धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए हो सकता है, संतान प्राप्ति के लिए हो सकता है, कोई अगर काम आपका बहुत सालों से अटका पड़ा है उसको पूर्ण करना है तो उसके लिए यक्षिणियों को बुलाया जा सकता है। तो इस तरह से यक्षिणियों की साधना की जाती है, वो आते हैं। लेकिन अगर इस यक्षिणी साधना में ज़रा भी कुछ गलत हुआ, एक पर्टिकुलर यंत्र होता है, अगर वो यंत्र ज़रा भी गलत हुआ तो वो यक्षिणी आपको वो वरदान देने के बदले आपको शाप देकर चली जाएगी। तो वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल जैसे होते हैं। तो मैंने जो बुक लिखी थी अपनी यक्षिणी पर, तो मैंने तो एक फिक्शनल यक्षिणी बनाई जिसका नाम था रति सुंदरी। तो वो भी धरती पर आती है, लेकिन उसको खुद एक शाप मिला होता है कुबेर से कि उसको धरती पर आकर एक पूरा इंसानी जीवन, मानवीय जीवन उसको यहाँ बिताना है। तो इस तरह से यक्षिणियों की ओरिजिन स्टोरी होती है। और इसमें फैसिनेशन क्या है कि आपको पता नहीं है कि यक्षिणी आपको शाप देकर जाएगी या वरदान देकर जाएगी, लेकिन उसकी जो इच्छा है, उसका जो लोभ है, वो सबको है कि चाहे ये आ जाए मेरी ज़िंदगी में तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाए।
कुबेर भी एक यक्ष है,
बिल्कुल
स्टोरीज में मिलता है। ब्रह्म राक्षस की जैसे अभी हमने बात करी थी, आपने बिल्कुल सही बोला कि ब्रह्म राक्षस कोई ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब दसमवन, उस जिसके पास नॉलेज थी, जिसने खूब पढ़ाई लिखाई करी थी, जो स्पिरिचुअल था, उसकी जब डेथ होती है तो चांसेस होते हैं उसके ब्रह्म राक्षस बनने में। ऐसे मैंने एक बार, मेरे क्लाइंट थे, कॉल पे बातें, कहानियाँ काफ़ी सुनने को मिलती हैं, एक्सपीरियंसेस, उन्होंने ऐसे ही बताया था मुझे कि उनके घर में किसी को ऐसे ब्रह्म राक्षस ने पोजेस किया। पर अब जैसे पोजेस कर लिया, कोई लेडी थी, पर जो उसकी हरकत थी वो सारी पंडितों वाली थी। वो सुबह 4 बजे उठती थी, वो लेडी नहाती थी, बाहर का खाना नहीं खाती थी, प्याज लहसुन का खाना, की आवाज़ बदल गई थी, डेंजरस आवाज़ हो गई थी, सब कुछ था, बट नियम कानून तब भी फॉलो हो रहे थे लाइक ए ब्राह्मण। सो ये इस तरह की भी बहुत स्टोरी, ऐसे कोई किसी ने आपको कोई इस तरह की स्टोरी या अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बताया हो?
तो मैं तो कोंकण से आता हूँ, तो कोंकण में ऐसी बहुत कहानियाँ हैं, जगह जगह पर आपको कोई ना कोई फोक स्टोरी ऐसा मिल जाएगा जो बहुत ही यूनिक होती है। अब एक चीज़ है, हमारे इंडियन फोक लोर में बहुत यूनिकनेस है और कहानियाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। लोग क्या है, अपने रीजन में एक कहानी बना डालते हैं। तो एक कहानी मैंने सुनी थी, ये भी फोक लोर है। एक जंगल जैसा था, नाम भूल रहा हूँ जंगल का, कोंकण का ही एरिया है, लेकिन एक बहुत ही जंगल जैसा एरिया था जिसके बाहर एक गाँव भी था। तो उस जंगल में बहुत सारी फीमेल स्पिरिट्स, उन्होंने अपना वास कर लिया था, वो रह रहे थे। और ये फीमेल स्पिरिट्स एक तरह की मोहिनी जो है, तो वो इंसानों को ललचाती थी। जंगल से थोड़ा बाहर आकर अगर कोई अकेला सा आदमी जा रहा हो तो उसको ललचाना, उसको जंगल में ले जाना, वहाँ उसकी हत्या कर देना, तो ये उनका काम हो गया था। तो अच्छे अच्छे लोग भी इसमें फंस रहे थे, जो मतलब बिल्कुल ही इनोसेंट हैं, बिल्कुल ही अपने इंद्रियों पर सब कंट्रोल रखे हुए हैं, वो लोग भी फंस जाते थे। तो जब ये बात बहुत बड़ी हो गई, तब इन्होंने लोग गांव ने सोचा कि अभी कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे स्पिरिट्स थे, एक नहीं थी जिसको हराया जा सके, बहुत सारे स्पिरिट्स थे, और वो स्पिरिट्स कैसे उनके ऊपर हावी हो सके करके, तो इन्होंने एक तांत्रिक को पकड़ा, और वो तांत्रिक का नाम था भूताल। अब भूताल का मतलब ये है कि भूतों को कॉन्कर करने वाला, ठीक है। तो भूताल को उन्होंने पकड़ के लाया और भूताल को कहा कि मतलब ये हमारे गांव की पीड़ा है, यहाँ इतने सारे स्पिरिट्स हैं और इनको अभी क्या किया जाए। तो भूताल ने एक तरीका निकाला, भूताल ने एक नारियल लिया और उस नारियल पर उसने कुछ ऐसे रिचुअल्स किए कि वो नारियल एक तरह का मैग्नेट बन गया, कि मतलब अभी जो भी स्पिरिट्स हो वो उस नारियल की तरफ आकर्षित हो जाए। तो वो नारियल लेकर बहुत दिनों तक वो जंगलों में घूमा अकेला, और उसने कहा कि जब वो वापस आया कि अब इस नारियल में मैंने सारे के सारे स्पिरिट्स को कैद कर दिया, अब वो इस नारियल में है, और उसको उसने सील कर दिया, मतलब काउडंग लगाकर, टर्मरिक लगाकर, थोड़ा कुमकुम लगाकर नारियल बंद हो गया और सील हो गया। और उसने बोला कि अब इस नारियल को, इसमें सारी जितनी भी वो मोहिनियाँ थी वो अब इस नारियल में है, और इसको अब कोई भी तोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये एक नारियल एक तरह का ऐसा नारियल है जिसमें बहुत ही नेगेटिव शक्ति है, अगर ये टूटा तो फिर मतलब प्रलय आ जाएगा ऐसा। अब उसने जाकर, खुद जाकर उस नारियल को कहीं ना कहीं छुपा दिया उसी जंगल में, और उसने उस नारियल का पता किसी को नहीं बताया। अब मान्यता ये है कि वो नारियल अभी भी उस जंगल में कहीं ना कहीं छुपा है, और आपको कभी कभी वहाँ वो नेगेटिव एनर्जी अभी भी फील होगी, लेकिन वो स्पिरिट्स उसके अंदर है और ये नारियल अब भी है।
जी, किस कहाँ की, कोंकण की कहानी है
ये? कोंकण की कहानी,
और किसी भारत के एरिया की कोई कहानी?
आसाम में है एक फिशरमैन का स्पिरिट है, आपने सुनी है ये कहानी, जिसको इसको बाघ कहते हैं, बाघ। तो कहा जाता था कि मतलब एक फिशरमैन था, मच्छी वाला, मच्छी पकड़ने वाला, तो वो जब पानी में चला गया बोट में, तो वहाँ वो डूबकर मर गया। और तब से उसका जो स्पिरिट है, भूत है, वो उस पानी में, उस इलाके में घूमते रहता है। तो अब उसका क्या काम है कि मतलब अगर कोई दूसरा मछुआरा अगर गया अंदर और वो थोड़ा और दूर चला गया, मतलब तट से दूर, तब ये आता है उस पर, ये बाघ जो है। और इसका आने का तरीका भी बहुत यूनिक है, क्योंकि वो पानी के अंदर स्विम करके आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कोई है, आपको सिर्फ पानी थोड़ा सा हिलता हुआ दिखेगा, वो आएगा सीधा आपके बोट के पास, और बोट के पास आकर बोट में छलांग लगाकर आपको नीचे ले जाएगा। अब इसके दो तीन विशेषताएं हैं ये बाघ स्पिरिट की। एक तो ये है कि मतलब वो एक जिसको भी वो मार डालता है उसके वो गहने, मतलब कोई रिंग हो या जो हो, उसको वो ले लेता है, मतलब अपना एक मेमेंटो करके अपने पास रख लेता है। उसके पास एक पाउच है जिसके अंदर वो डालते रहता है, तो उसने जितने भी मछुआरों को मारा है उसका संपत्ति उसके पास है। दूसरा ये है कि उसे मच्छी बहुत पसंद है, तो उसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है, ये अभी भी ये फिशरमैन ये फॉलो करते हैं, एक प्रिंसिपल है। वो लोग क्या कहते हैं कि अपने बोट में कुछ सड़ी हुई मच्छी रखते हैं, जो मतलब बिकी नहीं हो वैसे वाली मच्छी वो लोग रख के जाते हैं। तो जब भी उनको पानी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखा तो वो उनमें से एक मच्छी लेकर फेंक देंगे पानी में उस तरफ। और वो कहते हैं कि मतलब वहाँ वो बाघ आया था और वो बाघ वो मच्छी लेकर चला जाता है वहाँ से। तो ये छोटी सी कहानी है लेकिन इंटरेस्टिंग इतनी है क्योंकि इसमें इंडिया का जो है ना अपना कोने कोने में छिपी हुई हॉरर कहानियाँ, उसका फ्लेवर हमें मिलता है।
आपने कहीं देखा जैसे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा लोग मानते हैं या साउथ में या वेस्ट में?
हर जगह मानते हैं। मुझे अभी एज अ हॉरर होता है, मुझे तो मैसेजेस हर जगह से आते हैं। बंगाल से बहुत कहानियाँ आती हैं,
वेस्ट बंगाल काले जादू के लिए फेमस भी है, और माउंटेन्स से में भी काफ़ी ज़्यादा ये ऐसी स्टोरीज होती हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया।
माउंटेन्स से तो बहुत सारी कहानियाँ इसलिए आती है क्योंकि माउंटेन सबसे पहले हम अगर देखा जाए तो हमने उनको कॉन्कर नहीं किया है, माउंटेन्स हमसे बड़े हैं और वहाँ जाना भी एक मतलब खतरा है। नॉर्मली भी माउंटेन्स हो या मैं तो कहता हूँ कि इवन समुंदर, अब समुंदर के अंदर क्या है वो हमें पता नहीं है, माउंटेन्स के ऊपर क्या है पता नहीं है। कहानियाँ ऐसे हैं कि माउंटेन्स के ऊपर राक्षस भी रहते हैं, येती रहते हैं, बिग फूट रहते हैं, सब ये कहानियाँ हैं। तो माउंटेन से कहानियाँ इसलिए आती हैं। और वहाँ कैसा होता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट ही कुछ अलग हो। अगर आप अभी शिमला तो ऑलमोस्ट सिटी हो गया, लेकिन अगर आप थोड़ा दूर जाओ माउंटेन्स में तो एकदम ही शांत रहता है, सन्नाटा रहता है, सिविलाइजेशन का उस पर कोई भी असर नहीं है अभी तक। तो यहाँ की जो कहानियाँ हैं वो अपने आप बहुत अच्छी फैसिनेटिंग बनती जाती है। जैसे अचेरी एक स्पिरिट है, ये भी माउंटेन की कहानी है, हिमाचल की कहानी है। तो कहानी ऐसी है कि मतलब एक फैमिली गई थी हिमालय पर, यह थोड़ा रीसेंट भूत है, और उसमें एक लड़की थी वो फैमिली में, 10 साल 12 साल की एक लड़की थी। और वो लड़की की मतलब एक अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया, वो पहाड़ से गिरकर वो मर गई, और वो जहाँ जिस हिल स्टेशन पर जाना चाहती थी वहाँ वो पहुँच नहीं पाई। वो भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि चलो पापा ले जाएंगे, हिल स्टेशन ले जाएंगे करके, लेकिन हिल स्टेशन पहुँचने से पहले वो पैर फिसल कर उसकी मौत हो गई। अब कहा जाता है कि ये जो लड़की है वो लड़की का भूत अभी भी इस हिमाचल में घूम रहा है। तो पहाड़ से गिरकर उसकी मौत हो गई और उसकी वो जो इच्छा थी वो नहीं पूरी हो पाई। अब कहते हैं कि ये लड़की अभी भी पहाड़ों में घूम रही है, उसका जो स्पिरिट है, और अगर वो किसी फैमिली को देख ले जिसमें एक छोटी लड़की है या छोटा लड़का है उसकी उम्र का, तो वो उन्हें रिझा कर बुला कर पहाड़ के एज पर ले जाती है और उन्हें भी गिरा देती है। तो मतलब ये स्पिरिट है तो उसे अपने कंपेनियंस चाहिए, उसको अपने दोस्त चाहिए, तो ये सब मिलकर वो अचेरी इन लोगों को उठा ले जाती है। अब इससे बचने का भी एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि अचेरी को लाल रंग बहुत पसंद था। अचेरी मतलब वो लड़की का नाम कुछ और था, लेकिन उसे जब वो जीवित थी तभी उसे लाल रंग बहुत पसंद था। तो अब ऐसा कहा जाता है कि जो भी बच्ची कुछ भी लाल पहने तो अचेरी उसे नहीं पकड़ती फिर, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ठीक है ये ठीक अच्छी लड़की है, जीने दो। तो इसलिए एक पैच है हिमाचल पर, एक रोड का एक स्ट्रेच जिसे कहते हैं, तो वहाँ जब लोग जाते हैं तो वो लड़कियों को एक लाल स्कार्फ या कुछ ऐसा पहना देते हैं ताकि अचेरी अगर हो भी तो भी वो उन्हें बख्श दे।
वेस्ट बंगाल की
वेस्ट बंगाल में तो भंडार है पूरा कहानी होगा. जैसे सुंदरबन में है, सुंदरबन में सबसे फेमस है अलया लाइट्स करके, इंग्लिश नाम है उसका. तो अलया लाइट्स ये भी मछुआरों के ही भूत होते हैं. सुंदरबन तो आपको पता है पूरा मार्श लैंड एरिया है, दलदल है. तो वहाँ कहीं ना कहीं, मतलब अगर बीच में आप जा रहे हो कहके रास्ता पकड़ के कहीं भी, तो दूर आपको दिखेगा कि लाइट्स चमक रहे हैं. ये लाइट्स ग्रीन येलो कलर के लाइट्स होते हैं, वो लाइट्स अपने आप में चमकते होते हैं. मतलब उसका कोई कहाँ कुछ नहीं है इलेक्ट्रिक कनेक्शन या कुछ, ऐसे ही दूर आपको ऐसा एक ग्लो दिखेगा और वो ग्लो ऐसा चलते जाता हुआ आपको दिखेगा. अब कहा जाता है कि लोग जब वो ग्लो को देखते हैं तो वो इतना उसके वश में हो जाते हैं, एक तरह का फैसिनेशन हो जाता है कि वो उसको फॉलो करते कहते कहते वो बिल्कुल अंदर तक चले जाएंगे और फिर वो कभी वापस नहीं आएंगे. तो ये एक मिस्ट्री है. अब इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि दलदल है, दलदल है तो वहाँ डिकम्पोजिशन तो होता होगा डेफिनेटली, और जो ये हो रहा है उसके वजह से मीथेन गैस वहाँ रिलीज़ होती है. और मीथेन गैस तो हमें पता है कि वो जलाने में काम आती है, वो खुद भी जलती है, एक्सप्लोजिव जैसे कहते, तो इन्फ्लेमेबल जिसे कहते हैं. तो ये मीथेन गैस आग पकड़ लेती है कभी कभी, और इस आग के ग्लो के वजह से हमें ये अलया लाइट्स दिखते हैं. तो ये भी एक पहलू है. हम कहते हैं कि मतलब ये एक फोकलोर है, ये कहानी है भूतों की, लेकिन उसका एक साइंटिफिक रीज़न भी बहुत बहुत बार हमें मिल जाता है. अब फिर वो लोगों के बिलीफ में जाता है कि आप क्या मानना चाहते हो. बंगाल की एक और फेमस कहानी है शाकचुन्नी वाली, और शाकचुन्नी का स्पिरिट मतलब बहुत ही फेमस है. बहुत सारे ओरिजिन स्टोरीज भी हैं. मतलब शाकचुन्नी जो है वो इतनी फेमस है कि मतलब उसके बहुत सारे वर्जन्स बने हुए हैं. तो एक वर्जन तो ये है कि शाकचुन्नी एक वूमन होती है, लेडी होती है, और शादी के तुरंत बाद अगर उसकी मौत हो जाए तो वो फिर शाकचुन्नी में कन्वर्ट हो जाती है. और उसको ऐसा फील होता है कि मतलब मैं शादी हो गई मेरी, लेकिन मुझे शादी का सुख नहीं मिल पाया, मेरे बच्चे नहीं हुए, मुझे बच्चों से खेलना नहीं मिला. तो वो क्या कहती है, फिर वो एकदम क्या बदला लेने की भावना उसमें आ जाती है. और वो मेनली शाकचुन्नी जो है वो उसी फैमिली को टारगेट करती है जिसमें उसकी शादी हुई हो. तो अगर उसमें कोई नई बहू आए तो उसे वो शाकचुन्नी का स्पिरिट दिखेगा या अफेक्ट करेगा. बहुत सारे वर्जन्स हैं. कहा जाता है कि शाकचुन्नी एक स्पिरिट ऐसी बन जाती है कि उसका लस्ट अभी तक बचा रहता है, वासना जिसे, और वो उस वजह से जितने भी उस गांव में मर्द होंगे उनको वो रिझाने भी चल जाती है. तो इस अलग अलग वर्जन्स हैं, अलग अलग स्टोरीज.
जैसे अभी तक हमने जितनी आपसे स्टोरी सुनी उसमें यक्षिणी है, शाकचुन्नी है और अचेरी है, ये अलग है. लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि ये जो इंटिटी हैं ये पॉजेस कर लेती हैं जीवित इंसान को, औरतों को. जागरण में देखने को मिलता है माता आ गई, माता आ गई. ये ऐसा कुछ आपने कभी देखा, और या इसमें कितनी सच्चाई है?
जागरण में जो पोजीशन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. अब जब आप देखते हो नवरात्रि में या जागरण में जब ऐसा होता है पोजीशन, तो कहा जाता है कि वो माता आ गई, मतलब वो देवी का पोजीशन हुआ. अब एक बहुत एक पिछले साल एक मूवी आई थी, बहुत फेमस हुई थी, कंतारा. और कंतारा में भी एक दैव थे. दैव मतलब फॉरेस्ट के जो भगवान होते हैं, डेइटी होते हैं. ये कर्नाटका की स्टोरी है, नॉर्थ कैनरा में जो तुलू स्पीकिंग जो एरिया है, जहाँ तुलू बोला जाता है, उस एरिया में ये एक मान्यता कि जंगलों में दैत्य होते हैं, दैव होते हैं, और वो दैव जो हैं वो उस जंगल की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. और प्रोटेक्ट कैसे करेंगे वो, मतलब वो दैव तो अभी इस जो हमारा कलयुग चल रहा है, दैव तो इंसानों से बात नहीं कर सकते डायरेक्टली. तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, वो एक आदमी को पकड़ लेते हैं जो कि योग्य हो, और उस आदमी के शरीर में घुसकर वो जो कहना है वो लोगों को उसके द्वारा कहते हैं, मतलब वो एक मीडियम बन जाता है. और ये होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे जिसे कहते हैं भूताकोला, जो एक फेस्टिवल टाइप है. तो वो फेस्टिवल में उस आदमी के शरीर में ये स्पिरिट घुसता है, और जो भगवान का स्पिरिट है, और वो लोगों को बताता है कि क्या करना है. और अगर जंगल में कुछ गलत हो रहा है तो वो स्पिरिट एक उग्र रूप भी ले सकता है. तो ये भी कहानी है, ये भी पोजिशन है. पोजिशन इंसानों का भी होता है, मतलब अभी ये तो जो हमने बात की जगराता की है कंतारा की, ये भगवान का पोजीशन है इंसान पर, लेकिन पोजीशन इंसान का इंसान पर भी हो सकता है। अगर कोई जैसे हमने स्टार्ट में ही बात की थी भूत की, तो भूत एक कॉमन टर्म नहीं है,
ओके,
भूत एक स्पेसिफिक टर्म है। तो भूत क्या होता है अकॉर्डिंग टू फोकलोर, भूत वो होता है जो एक इंसान मरा हो, इंसान एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन वो मर जाता है, और अगर उसको अपना मोक्ष नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली, तो वो वहाँ यहाँ रह जाएगा, उसकी कोई इच्छा अपूरी है तो वो यहाँ रह जाएगा और वो भूत बन जाता है। और वो भूत, अब भूत तो सभी बनेंगे, लेकिन सभी भूत दिखेंगे नहीं, दिखेंगे वही भूत जो मतलब ज़्यादा उनके दिमाग में बहुत सारा नेगेटिविटी भरा हुआ है, ताकि वो अब मैनिफेस्ट कर सके अपने आप को। या तो अगर आप बहुत बड़े साइकिक हो, तो हर एक की साइकिक क्षमता जो है वो अलग होती है, मैं चाहे भूत देख सकूं, आप नहीं देख सको, ऐसा अलग अलग होता है। तो अगर आप बहुत बड़े साइकिक हो तो आपको शायद भूत दिख भी जाए, तो ये टू वे प्रोसेस है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये भूत जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो किसी इंसान के शरीर में घुस जाते हैं, और अगर वो घुस गए तो फिर वो एक पोजीशन जिसे कहते हैं उसको निकालना होता है, तो उस प्रोसेस को हम एक्सोरसिज्म कहते हैं। अब हम इन सब चीज़ों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक डिस्क्लेमर भी डालना होगा कि हम पोजीशन की बात करते हैं, ये फोकलोर में बहुत कॉमन है, कहानियाँ इनकी सुनने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये एक तरह का मेंटल इलनेस ही है। अब साइकोलॉजी में हम अगर जाएँ तो एक टर्म है जिसे कहते हैं डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID। कुछ लोग होते हैं जो अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि अपनी पर्सनालिटी चेंज हुई है। अब मैं बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मैं अभी नील डिसिल्वा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं एक दूसरे जोन में ही चला जाऊँ और मैं कोई और ही बन जाऊँ, सिर्फ एक कोई और बन ही ना जाऊँ लेकिन उसकी तरह बिहेव करने लगूँ, उसकी तरह बात करने लगूँ। और दिस इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मतलब कुछ भी आप चेंज हो सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि वो दूसरे पर्सनालिटी में घुस गए और वापस आ गए। तो अब कहा जा रहा है कि जितने भी पोजीशन के केसेस हैं, ये सभी DID के किसी न किसी रूप से आए हुए हैं। सिंपल इंग्लिश में उसे स्प्लिट पर्सनालिटी भी कहते हैं। अब स्प्लिट पर्सनालिटी हम सब में है, कोई कुछ ना कुछ हद तक तो हम सब में स्प्लिट पर्सनालिटीज है, क्योंकि हम कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं कभी, और सडनली हमें गुस्सा आ जाता है,
डिफरेंट डिफरेंट लोगों के सामने अलग अलग होते हैं,
हमारा इमोशन बदल जाता है तुरंत, है ना, और अलग लोगों के साथ भी हम अलग रहते हैं। तो ये भी एक तरह का स्प्लिट पर्सनालिटी है ही है। कुछ लोगों में ये बहुत एक्यूट हो जाता है, और अगर आप अभी जगराता का या नवरात्रि का आप एनवायरनमेंट देखो तो कैसा होता है, भूता कोला, लोग बहुत म्यूजिक बजाते हैं, बहुत सारा
भूता कोला क्या,
कंतारा का जो था, अच्छा, मतलब वही जो दैव स्पिरिट जो आता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत शोरगुल होता है, लोग रहता है, लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं उस समय पर, पूजा कर रहे होते हैं सब, ना कोई गाना चल रहा होता है। इस सब माहौल के वजह से भी कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा मतलब वल्नरेबल हो जाते हैं, उनका इमोशनल जो स्ट्रक्चर है वो वैसे भी वीक रहता है, और वो स्लिप कर जाते हैं अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में, उनको पता भी नहीं चलता है कि वो अभी दूसरे पर्सनैलिटी में चले गए। आसपास के लोग जो देख रहे हैं वो सोचते हैं कि ये पोजेस हो गया, लेकिन ये एक मेंटल इलनेस ही है जिसे हमने अभी तक उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, और इसीलिए हम उसे पोजेशन का नाम देते हैं। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि ये भी एक इलनेस है, एक तरह की बीमारी है, तो शायद इसका ज़्यादा हमें क्लू मिलेगा कि ये क्या है।
क्या ये जो स्पिरिट्स होती हैं डिज़ायर पूरी कर सकती हैं, जैसे आपने कुछ कुछ बताया कि वो लश के लिए अट्रैक्ट कर रही है, यक्षिणी धन दे रही है, पैसा दे रही है, ऐसे जिन होता है, जिन सुनने को मिलता है हमें, तो क्या ये सच में ऐसा होता है कि वो डिज़ायर पूरे कर दे आपके?
वो लोगों के बिलीफ पर है। अब यक्षिणियों की भी जो कहानी कहते हैं, हम कहानी के हिसाब से बहुत अच्छी सुनने में आती है, लेकिन ये बेसिकली होता क्या है, बेसिकली ये होता है वो जो इंसान है जो यक्षिणी साधना कर रहा है, ये पूरा उसके ऊपर सेंटर्ड है। वो इंसान पूजा कर रहा है, वो साधना कर रहा है, वो इतने अपने कॉन्सेंट्रेशन से कर रहा है, उसका दिमागी संतुलन इतना स्ट्रांग है कि मुझे ये चाहिए, ये यक्षिणी यहाँ आनी चाहिए, और इसने करना है, तो वो खुद ही अपने आप से एक तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है उसको जो चाहिए। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि आप जितनी जितने इंटेंसली किसी चीज़ को आप मान आप उसकी क्या कहते हैं उसके शब्द क्या है
आस्क बिलीव
अट्रैक्ट करें
एक्सेप्ट
हाँ आस्क बिलीव एक्सेप्ट तो जितने आप स्ट्रांगली उसकी उसके पीछे आप लग जाए तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी एक तरह का ये मैनिफेस्टेशन है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हो रहा है वो हम अपने लाइफ में ला सकते हैं थ्रू अदर थिंग्स मतलब अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए एग्ज़ाम में या आपको कोई प्रोमोशन चाहिए तो आप ये ला सकते हैं ये लोग वही यूज़ कर रहे हैं लेकिन एक सुपरनेचुरल तरीके से तो वो सोचते हैं कि अगर यक्षिणी मेरे ज़िंदगी में आ जाए तो मेरा ये काम पूरा हो जाए इसलिए वो लोग साधना कर रहे हैं इसलिए वो लोग ये पूरा रिचुअल बना रहे हैं तो ये एक तरह से मेरे हिसाब से अगर मेरा ओपिनियन आप ले रहे हो तो फिर मैं तो कहूँगा कि ये सारी जो इच्छा पूर्ति की चीज़ें हैं ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही आती है कहीं ना कहीं से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है
काम करता है आपके लिए क्या कभी
बहुत बार
कुछ किस्सा
ये लेकिन हॉरर नहीं हुआ लेकिन हुआ था एक बार जब बहुत ही सीरियस केस था मैं मुझे डेंगू हो गया था और बहुत दिन तक वो रहा मतलब प्लेटलेट काउंट बहुत ही नीचे जा रहा था अब का मतलब ऐसा होता है कि 40,000 से नीचे अगर जाए तो आपको हॉस्पिटलाइज होना है तो हो रहा था मेरे साथ वही मतलब मैं थोड़ा सा ऑन द एज था और पूरा वीक हो गया था मैं हिल भी नहीं पा रहा था कुछ भी कोई भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा था मतलब ऐसा पड़ा रहता था बस तो जिस दिन डॉक्टर ने कहा कि मतलब अगर आज हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे तो फिर बाद में कल का दिन पता नहीं कैसा होगा तो उस दिन सारी बात मैंने यही मांगा है एक तरह से किससे मांगा है मुझे नहीं पता बस ऐसा ही एक चीज़ मैं अपने मन में बोलते जा रहा था कि मतलब बस ये ठीक होना चाहिए ये ठीक होना चाहिए ठीक होना चाहिए अगले दिन मैं प्लेटलेट काउंट अपने आप बढ़ने लगा 40,000 से डायरेक्ट जंप करके 65,000 पे चला गया
जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं कई सारे लोग पैरानॉर्मल रिसर्चर्स होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं आई होप आप इनसे जरूर मिले होंगे
कभी मैंने बुक्स भी लिखी है उनकी कहानियों पर
तो ये कुछ कैसे पता करते हैं कि इस जगह पे जैसे हम मूवीज़ में तो देखते हैं मशीनें भी आ गई हैं अब तो भूत पकड़ने वाली तो इसके पीछे का साइंस क्या है क्या इनकी इंट्यूशन हाई होती है या ये जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को
अब हम पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को एक ही टर्म में अगर क्लब करें तो वो भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें भी अलग अलग तरह के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनका भी तरीका अलग होता है अब मैंने दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से बहुत क्लोजली काम किया है उनके साथ उनकी किताबें लिखी हैं मैंने एक तो है जय अलानी और दूसरे हैं सर्वजीत मोहंती दोनों ही फेमस हैं दोनों ही ये सारी जो आप एक तरह से कह सकते हो अंधविश्वास भूतों को लेकर जो है उसको निकालने की कोशिश करते हैं या तो प्रूफ की भूत है या प्रूफ की भूत नहीं है तो ये लेकिन उनके तरीके बहुत अलग हैं अब जय जो है वो अपना सेंस लेकर अपना बिलीफ लेकर वो चलता है और वो हॉन्टेड लोकेशन पर जाकर वो ट्राई करता है देखने को इन्वेस्टिगेट करने को कि यहाँ कोई भूत प्रेत है या नहीं है या उसका कोई रीज़न क्या है अब वो गया है कुलधारा में भानगढ़ में मयोंग में ये जितनी भी जैसे जगह हैं जिनके नाम बहुत फेमस है कि ये भूतिया जगह है वो वैसे जगहों पर गया है 200 से ऊपर जगहों पर गया है और वहाँ उसने सारी रात बिताई है देखने की उधर कुछ है या नहीं और वो गया है कोई भी डिवाइस बिना लिए सिर्फ अपना सेंस लिए और अपना इंट्यूशन लेकर कि मतलब यहाँ कुछ है या नहीं और उसने बहुत सारी चीज़ें इसे फाइंड आउट भी की है मतलब कि इसका सच क्या है जैसे फॉर एग्जांपल भानगढ़ में ऐसा एक केस हुआ था मैं बुक में है ये हॉन्टेड नाम की जो बुक है भानगढ़ में बहुत सारे लोग ऐसे मूर्छित पाए जाते थे सुबह को जाते थे रात भर और सुबह को वो अनकॉन्शियस पाए जाते थे तो भानगढ़ जो है वो एक फोर्ट है और उसको कहा जाता है कि वो बहुत ही भूतिया है करके तो जय गया था उधर देखने की मतलब क्या हो रहा है तो मैं पूरी स्टोरी डिटेल में तो नहीं बताऊंगा लेकिन ऐसा है कि मतलब उसने फाइंड आउट किया कि वहाँ एक जगह जगह पर भानगढ़ में ये तांत्रिकों ने अघोरियों ने अपने डेरे डाल रखे थे मतलब कैंप डाल रखा था क्योंकि वैसे भी वो हॉन्टेड जगह है तो उनको आकर्षित तो करेगी और वो अपने अपने रिचुअल्स करते थे और इन रिचुअल्स में बहुत कुछ होता था मतलब ह्यूमंस को पकड़ कर सैक्रिफाइस भी होता था तो ये एक एक्सपोजिशन जो कहते हैं एक तरह से वो जय ने इस केस में किया था जिसके बारे में लिखा भी है और ये थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग था, मतलब लोग सोचते थे कि ये हॉन्टेड के बेस पे कुछ है, लेकिन ये कुछ और ही निकला।
मतलब लोग सोचते थे यहाँ भूत है, लेकिन अघोर या इस तरह के जो रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं वो लोग उन्हें पकड़ लेते थे।
ओके, और इसलिए वो लोग अनकॉन्शियस या जो भी है,
तो धोखा हो गया मेरे बिलीव के साथ,
बहुत बड़ा धोखा हो गया हमें।
क्योंकि हम लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम तो दोस्त लोग यही सोचते थे कि यार चलो ट्रिप पे चलते हैं, भानगढ़ घूम के आते हैं, वो होता है ना एक्साइटमेंट। सो ये नाइस, अच्छी खोज है।
विजिट करने के लिए भानगढ़ बहुत अच्छी जगह है।
वो जो मशीनें होती हैं, जैसे मैंने कभी न्यूज़ चैनल्स में भी देखा है, वो इधर टेंटे टेंटे बोल रहा है तो इधर ज़रूर कुछ है, इसमें कुछ सच्चाई है?
मशीनें जो है वो मेरा दूसरा जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर फ्रेंड है सरबजीत, उसने बहुत यूज़ किया है, और उसका भी एक बेसिस है। अब क्या होता है कि इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं कहूँ तो आत्मा होती क्या है। अब हम हैं, आप हैं, हमारे दो पार्ट्स हैं, एक तो हमारा शरीर है जो मैटर है, और दूसरा वो है जो हमें चला रहा है, अपना सोल है, अपनी आत्मा है, जो हम एनर्जी कह सकते हैं। तो हम दोनों मास एंड एनर्जी से बने हुए हैं। जब हमारी मृत्यु होगी तो शरीर तो चला जाएगा, लेकिन जो एनर्जी पार्ट है वो रहेगी, जो सोल है। अब अगर एनर्जी है तो एनर्जी को डिटेक्ट किया जा सकता है, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो मशीन्स यूज़ करते हैं, वो लोग का यही बिलीफ है कि अगर कोई एनर्जी है तो उस एनर्जी को आप डिटेक्ट कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप एनर्जी को कैसे डिटेक्ट करोगे, तो उसके लिए ये मशीन्स बनाई जाती है। जैसे सबसे फेमस मशीन है K2 मीटर, जिसे कहते हैं घोस्ट मीटर सिंपल इंग्लिश में। घोस्ट मीटर जो होता है वो पकड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, अब EMF। EMF एक तरह का वेव है, जो मतलब अगर कोई डिस्टर्बेंस हो, फॉर एग्जांपल अभी ये कमरे में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, तो अगर मैं उसके पास अगर लेके जाऊँ तो EMF वहाँ का बड़ा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप जंगल में वो मशीन लेकर जाओ, तो जंगल में तो ऐसा कुछ वायर नहीं है या कुछ नहीं है, तो वहाँ अगर आपका वो मशीन बीप हो तो उसका मतलब कि उधर कोई एनर्जी है, और वो एनर्जी कहाँ से आई है आपको पता नहीं है। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीके से वो लोग बिलीव करते हैं कि मतलब हमने कुछ पकड़ा यहाँ, हमने कुछ डिटेक्ट किया, और वो क्या था, वो एनर्जी कहाँ से आई, तो यू नो कनेक्ट द डॉट्स करके कि मतलब वो एक भूत है। तो ये जो मशीन्स हैं वो आपको भूत दिखाएंगी नहीं, वो हॉलीवुड मूवीज़ में आपको दिखाया जाता है, लेकिन आपको वो भूत एक्चुअली दिखेगा कभी नहीं। किसी ने आज तक भूत देखा नहीं है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर, मैंने इतने लोगों से बात की है, इतने केसेस देखे, भूत आपको दिखेगा नहीं। Okay. लेकिन आपको उसका
प्रेजेंस फील होगा,
कोई ना कोई साइन मिलेगा या कुछ ऐसा फील होगा कि कुछ है।
नील जी, जैसे एक ट्रेजिक सुसाइड हुआ था या मिस्टीरियस डेथ हुई थी बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस डेथ का फ़ायदा उठाया व्यूज़ गेन करने के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक एक्टिविटी ऐसी हुई जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड थी, कई फॉरेन के पैरानॉर्मल रिसर्च एक्सपर्ट सो क्लेम्ड, उन्होंने कहा हमने बात करी है उससे, और उसने बोला कि मुझे फांसी के फंदे पे लटकाया गया, किसी ने बोला नूज नूज की आवाज़ आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई होती है, क्या बात की जा सकती है ऐसी स्प्रिट से?
मैं तो कहता हूँ फिर उस अमेरिकन को पकड़ो, और जितने भी हमारे अनसॉल्व केसेस है सब उसी से सॉल्व करवाओ, क्योंकि उनको तो पता चलता है कि मतलब क्या करना है। ये झूठ है, सरासर झूठ है, ऐसा नहीं होता है। हम किसी से इस तरह से स्पिरिट मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा पॉडकास्ट में कि ये हमारी भूत अगर होते भी होंगे तो वो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी इतना अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगी कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करे या कोई भी आपको इस तरह का साइन दिखाए। तो ये तो सब एक कैश ग्रैब है, जैसे कहते हैं, बस लाइक्स बढ़ा लो, काम करो। पैरानॉर्मल वर्ल्ड अगर इतने आसानी से चलता होता तो सभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन जाते।
और एक वो गेम होता था, क्या बोलते हैं,
वीजा बोर्ड,
उसमें क्या है,
वीजा बोर्ड जो है वो एक्चुअली एक खिलौना था, एक टॉय था।
ओके।
जो कि हैसब्रो कंपनी में ने बनाया था 1893 में, और वो उस टाइम पे बनाया था जब ब्रिटेन में बना था। ये वॉर्स बहुत चलते थे, तो वॉर्स चलते थे तो लोग जाते थे लड़ाई पे, और उनके घर वाले सब परेशान होते थे कि अभी वो आएगा वापस या नहीं आएगा। तो एक तरह से एक मीडियम बना दिया इन्होंने कि मतलब इस पर आप ऐसे कॉल करो या जो भी करो तो वो आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये खिलौने के हिसाब से स्टार्ट हुआ था, लेकिन लोगों ने उसको इस तरह से यूज़ किया कि हम भूतों से बात कर सकें या ऐसा है। तो ये जितने भी टॉयज़ है या गेम्स है, जैसा ब्लडी मैरी का एक गेम होता है, तो चार्ली चार्ली का एक गेम बहुत फेमस हुआ था कि चार्ली चार्ली आप बोलो तो एक भूत आएगा आपके पास, ब्लडी मेरी आप 3 बार बोलो आईने के सामने तो वो आ जाएगी। तो ये सारे चीज़ें ये फ़न के लिए होता है, एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से, जब फ्रेंड्स बैठे हैं तो फिर टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ कर लो। मैंने वीजा बोर्ड यूज़ किया है और
कोई आया?
कोई नहीं। हम एक्चुअली उस वाइब में थे कि कोई आए, बहुत देर तक बैठे हुए लेकिन कोई नहीं आया। और थोड़ा बहुत क्या होता है ना, एक साइंटिफिकली फिर से अगर बोलें तो एक इडियोमोटर रिफ्लेक्स होता है हमारे, जिसे मसल मेमोरी भी कहते हैं। तो जब हम वो वीजा बोर्ड का जो प्लांचेट है उसको ऐसे पकड़ के रखते हैं तो अपने आप से अपने मसल हिलने लगते हैं, हमारा नॉलेज के बिना एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है और उस रिफ्लेक्स से हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमें जवाब दे रहा है या हमारा हाथ हिला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें ये क्योंकि अपना ब्रेन उस पूरी तरह से सोच रहा है कि मतलब अभी कुछ हो मैं तो हम वो कर लेते हैं।
आपने मूवीज़ की बात करी तो कुछ बताइए, कुछ हॉरर मूवीज़ जो देखनी चाहिए, जो हॉरर को पसंद है। हाँ, रिकमेंडेशन।
मेरी रिकमेंडेशन लोगों को पसंद आए ना आए क्या?
आप करिए।
मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ तो मुझे क्लासिक हॉरर मूवीज़ ज़्यादा पसंद है, तो जैसे ऑफकोर्स एग्जॉर्सिस्ट, ओमेन, ग्रज, ये सब तो है ही जो सबने देखी होंगी। लेकिन एक मूवी है जो शायद बहुत लोगों ने नहीं देखी है, उस टाइम पर बहुत बड़ी हिट हुई थी लेकिन आपका पता नहीं, और वो है रोजमेरीज बेबी। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है, अब आजकल के जनरेशन ने नहीं देखी होगी ये मूवी, तो एक बार देख लो। ये मूवी एक औरत के बारे में है जो प्रेग्नेंट है, अपने हस्बैंड के साथ अकेले रह रही है अभी, और उसके घर में वो मतलब ये तीन ही दो ही लोग हैं, बच्चा पैदा नहीं हुआ अभी तक, और नेबर्स हैं, और वो नेबर्स कुछ तरह के अजीब लोग हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, उनके घर से आवाज़ें आती हैं, ये होता है वो होता है, और फिर वो नेबर्स इस औरत का नाम रोजमेरी है, इस औरत से क्लोज होते हैं, करीब होते हैं, और उसको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में हम मदद करेंगे, ये करेंगे वो, और कुछ दवाइयाँ पिलाते हैं, ये पिलाते हैं। तो ये एक हॉरर का एटमॉस्फेयर बनते जा रहे हैं मूवी में। अब देख लो, मैं अभी आगे स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। तो जो इसका एंड है उसको हॉरर मूवीज़ में बहुत क्लासिक एंडिंग करके कहा जाता है। तो ये जो मूवी थी ये एटमॉस्फेयर की वजह से ज़्यादा क्रीपी है। एक और हॉलीवुड की मूवी है जो मैं आपको बताऊँगा, जो वो है दी अदर्स।
ओके,
दी अदर्स तो अभी यूट्यूब पर फ्री भी है देखने के लिए। तो ये भी एक हॉन्टेड हाउस मूवी है, नॉर्मल जैसा होता है। ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ में देखा गया है कि एक अच्छी सी हस्ती खेलती फैमिली जाती है नए घर में, उस नए घर में भूत है, तो अदर्स भी वैसे ही स्टार्ट होता है, लेकिन आपको पता चलता है कि एंड में ये कुछ और ही है बिल्कुल ही। तो स्पॉयलर्स तो मैं नहीं दूंगा, आप ये मूवीज़ देख लो। हिंदी मूवीज़ की बात करें तो फिर हिंदी मूवीज़ में आप तुम्बाड़ तो सबने देखी है।
तुम्बाड़ मुझे बहुत पसंद है।
हॉरर फैंस जो है तो आप तुम्बाड़ तो देख ही लोगे। मुझे परी भी बहुत पसंद आई थी।
ओके, अनुष्का शर्मा।
अनुष्का शर्मा की जो मूवी थी बहुत ही उसका जो स्टोरी बिल्डिंग था वो बहुत अच्छा था, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक औरत है, कहाँ से आई है कुछ पता नहीं, और अजीब अजीब हरकतें एक के बाद एक शुरू हो जाती हैं, वो बहुत ही अच्छा बिल्डअप था। एक मूवी है जिसका नाम है गहराई, पहले वाली मूवी।
अच्छा।
मूवी श्री वैम लागू, डॉक्टर श्री वैम लागू जो थे वो पद्मिनी कोल्हापुरे। ये एक एक्सॉर्सिज्म की मूवी है और इंडिया की सबसे डरावनी एक्सॉर्सिज्म की मूवी है। कुछ लोग कहेंगे कि बोरिंग है, लेकिन आप वो मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मतलब कितने स्लो बर्न मूवी जो होता है, स्लो बर्न हॉरर का ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है।
और मॉडर्न एज में कोई मूवी रिसेंट के इयर्स में?
हॉलीवुड में हेरिडिटरी।
हेरिडिटरी
बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई हुई मूवी है। कॉन्जरिंग पूरा सीरीज ही अच्छा है, लेकिन फर्स्ट मूवी स्पेक्टैकुलर, क्योंकि ये मूवी है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे ऐसी बनी थी ना, जिसने आप जो डिवाइसेस की बात कर रहे हैं वो डिवाइसेस उसमें दिखाए गए हैं, प्लस जो उसके स्केयर्स हैं वो ऐसे आते हैं कि मतलब आपको जंप स्केयर्स नहीं लगते हैं, आपको लगता है कि वो हॉरर के स्टोरी बिल्डिंग में ही है। मुझे इंसीडियस सीरीज भी बहुत पसंद थी।
इंसीडियस
सीरीज और एनाबेल की जो फर्स्ट मूवी थी। तो ये मॉडर्न मूवीज़ में ज़्यादातर हमने देखा है कि पहले जो मूवीज़ बनती थी वो क्रीचर्स पे बनती थी, मॉन्स्टर्स पे बनती थी, अब जो बन रही है वो पैरानॉर्मल पे बन रही है, मतलब भूतों पे,
पोजीशन पे,
ह्यूमन स्पिरिट्स पे, पोजीशन पे, तो एक चेंज भी आ चुका है।
तो ये जो कॉन्जरिंग है, जैसे मैंने कॉन्जरिंग देखी तो उसमें जो रिसर्च कर रहे थे वो आई गेस वो ट्रू स्टोरी है।
हाँ,
और
मतलब
उनका अमेरिका में कहीं है कि वो एनेबल वाली डॉल अभी भी रखी है वहाँ पे।
तो ये वॉरेन थे, इनका फैमिली नेम वॉरेन था, एड और लॉरेन हस्बैंड एंड वाइफ का कपल था ये, और वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे दोनों। तो उसमें से जो लॉरेन वॉरेन थी वो साइकिक थी, तो उनको पता चलता था कि अगर कुछ है रूम में जो हमें हम आपको नहीं दिखे हो तो उनको दिख जाता था। तो ये उनका केस था, कॉन्जरिंग का भी जो केस था वो उनका केस था, लेकिन मूवी के हिसाब से इन्होंने उसको बहुत ड्रामेटाइज भी किया था। तो इनके दो तीन और केसेस बहुत फेमस हुए थे, एक तो एनाबेल डॉल वाला। अब एनाबेल डॉल मूवी के लिए उन्होंने वो डॉल उस तरह से बनाई थी, बहुत क्रीपी लुक देकर और सब, लेकिन जो असली एनाबेल की जो डॉल है वो बहुत ही सीधी सादी दिखने वाली डॉल है, मतलब वो कपड़े से बनी हुई है।
ओके
okay. आपको वो डॉल अभी भी है, वो वॉरेन म्यूजियम है एक्चुअली अमेरिका में, तो वहाँ ये सारी चीज़ें हैं जितने भी हॉरर वाली चीज़ें हैं उनके रिसर्च में जिन जो उनको मिली हैं वो सब उन्होंने उस म्यूजियम में अभी भी रखी है, और वहाँ ये एनाबेल की डॉल भी है।
आप गए हो?
मैं नहीं गया अभी तक, लेकिन पिक्चर्स बहुत है, गूगल पर आप देख सकते हैं।
तो मैं भी देखूंगा इस पिक्चर को। नील जी, ईवी लाइन में आप कितना मानते हो या ब्लैक मैजिक में?
ब्लैक मैजिक एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, उसमें अभी इतने सारे एंगल्स है कि कहाँ से पकड़ कर स्टार्ट करें पता नहीं चलता, खासकर इंडिया में, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर ब्लैक मैजिक पे कुछ ना कुछ अलग बिलीफ है। अब फॉर एग्जांपल नींबू मिर्ची, ये तो आप जगह जगह देखोगे, घर पर लगाया जाता है, ऑफिस में, दुकानों में, हर जगह। और बिलीफ ये है कि ये जो नींबू मिर्ची आप लगाओगे तो उससे जो काली शक्ति है वो दूर रहेगी,
बुरी नज़र नहीं लगेगी,
बुरी नज़र नहीं लगेगी। तो उसमें भी एक स्टोरी है कि मतलब वो अलक्ष्मी को दूर रखने के लिए वो नींबू मिर्ची लगाया जाता है। तो ये तो बिलीफ पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया इसको माना जाता है और ये लगाई जाती है। तो उसमें एक फील आती है कि मतलब ब्लैक मैजिक का इधर कुछ है। अब मैं जब बुक लिख रहा था, ये मेरी जो बुक थी हॉन्टेड, तब रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जिसे बर्थ प्लेस ऑफ ब्लैक मैजिक कहा जाता है, और ये जगह है आसाम में, गुवाहाटी के पास। इसका नाम है मायोंग। तो जय के साथ जो मैंने बुक लिखी थी वो उसमें एक डेस्टिनेशन हमारा मायोंग भी था। तो मायोंग में ऐसा कहा जाता है कि मतलब जितने भी वहाँ लोग हैं वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, पुराने ज़माने से ये चलता आ रहा है, एंसेस्टर्स के टाइम से, और उनको एक उस वो जगह की जो मिट्टी है वही कुछ ऐसी है जो इन लोगों को वो ब्लैक मैजिक पावर्स देते हैं। अब ब्लैक मैजिक कहो या वाइट मैजिक कहो या मैजिक कहो, एक ऐसी पावर जो ह्यूमंस के पास नॉर्मली नहीं होता है। तो हमने देखा है जब ये मायोंग का जो विजिट चल रहा था जय का, तब लोग आ रहे थे वहाँ अपनी कोई ना कोई पीड़ा दूर करने के लिए, जैसे किसी को बैक पेन होगा या किसी को कुछ और रहेगा, सर दर्द जो जाता नहीं है, तो ये लोग आते हैं और वहाँ लोग रहते हैं, मतलब नॉर्मली लोग हैं, वहाँ के सिटीजन्स हैं, वहाँ के रेसिडेंट्स हैं, वो कुछ ना कुछ कर जिसको आप झाड़फूंक कहो या कुछ भी कहो उसका निवारण कर देते हैं। और ये लोग जाते हुए बोलते कि मैं बैकएक भी चला गया, ये भी चला गया, वो भी चला गया। तो इस तरह से एक जगह है जहाँ हमने देखा कि मतलब ब्लैक मैजिक को इतना डीपली माना जाता है। और राजस्थान में एक जगह है जहाँ ये ज़्यादातर एक बिलीफ है जिसे कहा, जिसे ब्राउन मैजिक कहा जाता है।
ओके ये पहली बार सुन रहा हूँ।
भूरा जादू। तो अभी डिस्टिंक्शन क्लियर है कि मतलब ब्लैक मैजिक उसे कहा जाता है जिसे मतलब नेगेटिव के लिए आप यूज़ करो, वाइट मैजिक वो है जो हीलिंग के लिए यूज़ करो, जैसे जितने भी नेचर स्पिरिट्स है वो वाइट मैजिक में बिलीव करते हैं। अब ये भूरा मैजिक या ब्राउन मैजिक जो है वो ऐसा माना जाता है कि ये दोनों के बीच में है।
ओके
मतलब ये फॉर एग्जांपल ग्रे मैटर है एक तरह का। तो एक क्लैन है वहाँ जो मोस्टली लेडीज़ हैं, और ये लेडीज़ क्या कहती हैं, ये जंग मतलब डेजर्ट्स में रहती हैं, और इनका काम ही था बहुत पुराने ज़माने से बच्चों को प्रोटेक्ट करना। तो उस ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी, मेडिवल टाइम्स की बात कर रहे हैं, और अगर कोई दुश्मन राजा ने अटैक कर दिया तो वो बच्चों को पहले मारता था क्योंकि वो वारिस ना बन जाए, बड़ा होकर वो राजा ना बन जाए। तो ये जो औरतें थी जो बेसिकली दाइमा जैसी थी, तो ये अपने लंबे लंबे घाघरों में घाघरा पहनती थी, बच्चों को छुपाकर यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। और कहा जाता था कि इन औरतों में ये करने मतलब ऐसे जो बच्चों को बचाती थी उसके वजह से उनको एक ऐसा वरदान मिला कि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके और अच्छे काम भी कर सके। तो ये कहा जाता है जो है ब्राउन मैजिक, ये राजस्थान में फेमस है डेजर्ट्स में जैसे जैसलमेर में, और उससे वो कुछ भी कर सकती थी, मतलब डेजर्ट में पानी निकाल सकती थी। तो ये एक क्लैन है जो अब गायब हो चुकी है, हमें पता नहीं है कि ये कहाँ गई, लेकिन कुछ म्यूजियम्स में आज भी आपको इनका मेंशन मिलेगा कि ये एक ब्राउन विचेस तरह के होते थे।
जैसे आपने नींबू मिर्ची की बात करी, तो मैंने कहीं पर सुना था ये कि एक तो लक्ष्मी जी होती हैं जिनका काम है आपको समृद्धि देना, सौहार्द देना, प्रॉस्पेरिटी देना, उन्हीं की बहन है जिन्हें अलक्ष्मी कहते हैं या दरिद्रता देवी कहते हैं। तो उनका जो फेवरेट फूड है वो खट्टा और कड़वा है। सो आप जब अपने दुकान के, ऑफिस के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्च लगाते हो तो दरिद्रता देवी घर के बाहर चक्के चली जाती हैं, घर के अंदर नहीं आती हैं।
यही है मैं बुक में प्रीफेस में मैंने ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है।
लेकिन इसके आगे बढ़कर अगर आप देखो तो जो लोग अपने, अब मैंने भी ये बात सुनी है, अपने घर में फ्रिज में किचन में नींबू मिर्च साथ रख देते हैं तो वो भी मना किया जाता है रिचुअल्स में, हिंदुइज्म में, कि इसको साथ में मत रखो, अलग अलग रखो, क्योंकि आप साथ में रख के बेसिकली आप दरिद्रता को इन्विटेशन दे रहे हो। तो ये भी एक बिलीफ है जिसमें हमें सोचना चाहिए। मैंने फिर से रखना बंद कर दिया नींबू मिर्च अलग अलग।
सो इसको आप थोड़ा और पीछे ले जाओ तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग ओरिजिन स्टोरी है। ये जो लक्ष्मी अलक्ष्मी की कहानी है ये तो बिल्कुल फेमस है, ये पता है लोगों को, लेकिन उसका एक ओरिजिन कैसे हुआ। तो पुराने ज़माने में लोग एक गांव से दूसरे गांव जब जाना होता था तो उनको लंबे लंबे जंगल क्रॉस करने होते थे, रास्ते तो थे ही नहीं, साधन भी नहीं थे, तो वो जब जाते थे तो उनको रास्ते में अगर भूख न लगे, इम्यूनिटी उनकी बढ़ जाए, क्योंकि जंगल में कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ काट ले तो आपको कोई बीमारी भी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए लोग दो चीज़ें ले जाते थे और वो था एक नींबू और थोड़ी कुछ मिर्चियाँ। तो ऐसा कहा जाता है ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर मिर्ची को आप चबा दो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो आपको अगर किसी ने काट लिया, कोई इंसेक्ट ने काट लिया, तो वो आपको वो जहर नहीं चढ़ेगा उतने आसानी से। नींबू अगर आप चट लो तो फिर आपको भूख नहीं लगेगी कुछ देर तक। तो इसीलिए लोग नींबू और मिर्ची दोनों को साथ में ले जाते थे। तो यहाँ से ये कहानी हुई कि मतलब आप नींबू और मिर्ची को अगर साथ में लो तो भूत प्रेत आपके पास नहीं आएंगे। वो भूत प्रेत कहाँ से आए? वो भूख और ये जो भी इंसेक्ट का काटना था या जहर, भूख और जहर से वो भूत प्रेत बन गए।
ओके, भूख और जहर से भूत प्रेत, दिस इज़ नाइस। मेरा जैसे गांव है ना, गोरखपुर के पास एक बस्ती जिला है, उसमें मेरा गांव है, वहाँ पर एक प्रैक्टिस बड़ी कॉमन है। जब भी कोई बच्चा या कोई लेडी ये कंप्लेन करती है ना कि बहुत दिनों से बुरे सपने आ रहे हैं और डर लग रहा है सपनों में, तो उनको कहा जाता है मिर्च खाना ज़्यादा शुरू करो। सो अब इसके पीछे कुछ साइंटिफिक होगा, आई डोंट नो वेरी मच, बट हाँ, जब आप मिर्च खाते हो तो आपको बुरे सपने, डरना सपनों में, रात में उठ जाना, ये चीज़ें बंद हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ये इंडिया बड़ा फैसिनेटिंग है नील डिसिल्वा जी, और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। कुछ लोग इसे मानते भी नहीं हैं बिल्कुल भी, उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होता, ये सब बस मन का भ्रम है या बीमारी है। अब मैं तो उनको कहता हूँ कि कई लोग तो भगवान को भी नहीं मानते,
बिल्कुल।
सो मानना ना मानना टोटली इंसान के ऊपर है, मानो चाहे आप ना मानो। ये चीज़ें जिनको दिखी हैं, कई फैमिलीज़ में ऐसा हुआ है कि बहन को देखा है, पापा को देखा है लोगों ने कि किसी ने पॉजेस किया है, उनका व्यवहार बदल गया है। ब्लैक मैजिक की बात करें तो कितने घरों में ऐसा होता है कि अचानक से सब बर्बाद होने लग जाता है, इतने सबके पढ़े लिखे बच्चे घर के टैलेंटेड कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो ये क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ तो है जिसको शायद हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, समझ के भी इग्नोर कर रहे हैं, न जाने।
ये तो बहुत ही कॉमन है, मतलब हम अपने, मैं मुंबई से आता हूँ जैसे मैंने कहा, मतलब शहर है, वहाँ की बिलीफ बहुत प्रोग्रेसिव माइंड वाले लोग हैं वहाँ, लेकिन वहाँ भी आप देखोगे तो ये जो भी बातें हैं ये मतलब बहुत प्रचलित हैं अभी भी। वहाँ भी लोग काला जादू में मानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मतलब किसी के घर के बाहर अगर चावल डाल दिए तो फिर वो घर की तरक्की कभी नहीं होगी, ये सब अभी भी होता है।
और वो बात भी सही है जो आपने कहा ना कि कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो उसको ट्रीट करते हैं। हमारे पॉडकास्ट अक्षत जी आए थे, उनके साथ भी एक ऐसी स्टोरी है कि उनके ऊपर कुछ हो गया था, फिर किसी ने उनको ट्रीट किया और वो एग्जैक्टली बता भी देते हैं कि किसने किया तुम्हारे ऊपर। पर क्यूरियोसिटी, कहावत है ना, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। कई सारे लोग, अगर जैसे आप इसमें काम करते हो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में, किसी को अगर बहुत इंटरेस्ट आ जाए तो उसे क्या नहीं करना चाहिए?
उसे खुद भूत ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या है वो शक्ति जो उसके पीछे पड़ी हुई है। कुछ हो भी सकता है सच में, कुछ नहीं भी हो सकता है। 99.99% उसका कोई साइंटिफिक रीज़न होगा, और या तो मन का वहम होगा, इलनेस होगा, या कोई और रीज़न होगा जो फिनोमिनन है जो पता नहीं चला होगा। लेकिन उस इंसान ने खुद कदम नहीं उठाने चाहिए कि मतलब ये कोशिश करे इसका निवारण करना, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता है, उसका उल्टा ही हो जाएगा कुछ ना कुछ। ये मोस्टली अगर फॉर एग्जांपल अगर ये कोई मानसिक बीमारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मानसिक बीमारियों के वजह से सोचते हैं कि भूत प्रेत ने अपने हम पर कब्जा कर लिया। जैसे मैं अभी एक बुक लिख रहा हूँ, उसमें एक रिसर्च स्टोरी ऐसे निकली है कि मतलब एक 19 साल का लड़का पूरी तरह से मानता था बहुत ही स्ट्रांगली कि रात को एक औरत आती है उसके सपनों में और उसके साथ कुछ बुरा कर्म करके चली जाती है, और जब वो सुबह को उठता है तो उसकी शक्ति पूरी तरह से चली गई है, और ये औरत बार बार हर रात आने लगी उसके सपने में। इतनी मतलब इतना कॉमन हो गया ये उसके लिए कि मतलब दिन में भी वो उस औरत को देखने लगा, और उसे ऐसा लगा कि मतलब वो कुछ उससे कहना चाहती है, करवाना चाहती है, पूरी तरह से उस पर कब्जा हो गया उसका, जागते समय भी और सोते समय भी। जब इसका रिसर्च किया, ये लड़का बहुत होशियार था, मतलब बहुत ही एकेडमिकली ब्रिलियंट, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा, लेकिन जब से ये किस्सा शुरू हुआ उसके साथ वो हर चीज़ में डाउन हो गया। उसका अच्छा सा एक रिलेशनशिप भी था वो भी ब्रेकअप हो गया, सब कुछ उसका चला गया। और फिर वो आया मतलब क्या है करके, मैं इसमें किस तरह से बिलीव करूँ। उसका 100% बिलीव था कि ये कोई भूतनी जैसे या पिशाचिनी कुछ है जो मैं पीछे पड़ी है। फिर उसका थोड़ा डिटेलिंग कर इन्वेस्टिगेशन कर पता चला कि उसको एक मेंटल इलनेस था उस लड़के को, और ऐसा अक्सर होता है क्योंकि यूथ में डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ लोग समझ नहीं पाते, कोप नहीं कर सकते इन डिज़ायर्स के साथ, और तब वो उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। और आजकल के जो जनरेशन है, आजकल की जनरेशन ही क्यों, हमारा जनरेशन भी, हम सब उसी में से निकले हुए हैं, टीनेज में हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन बहुत करते हैं, और जो हम देख लेते हैं या मूवी हो या बुक्स हो वो हमारे दिमाग में रह जाता है, किसी न किसी तरह से वो एक रूप ले लेती है हमारे दिमाग में। तो ये लड़के के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था, और जब उसको ये पता चला, जब उसको ये समझाया गया, तो वो समझ गया कि मतलब ये कोई भूतनी नहीं है, बट ये मेरे दिमाग में था, और अब वो ठीक है, अब वो अच्छा हो। तो ये अगर वो जाता था किसी भूत को पकड़ने की या ऐसा तांत्रिक के पास, तो उसका उल्टा ही हो जाता था। वो तो कह ही देता था कि हाँ भूतनी है, चलो मैं आता हूँ, मैं छोड़ा देता हूँ भूतनी, और उसको एक, उस लड़के को एक बुरा नाम भी मिल जाता।
एक बात और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कई लोग बिलीव करते हैं ना कि मेरे ऊपर काला जादू किसी ने करा दिया, पर जैसे हमारे क्लाइंट्स आते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया है मुझे, उन्होंने बताया कि किसी ने कुछ करा दिया। अगर आप बार्बर की शॉप पे जाओगे तो वो तो कहेगा ही कि हेयर कट करा लो, ठीक है,
बिल्कुल।
तो इसी तरह से बहुत रेयर होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा, इट इज़ वेरी रेयर। आजकल के टाइम में ये करने कराने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, और अगर जैसे एक बड़ी फैंटसी होती है स्पेशली यंग जनरेशन में कि हम उससे प्यार करते हैं, उसको वसीकरण कर ले, मूवी भी आई थी वो शैतान वाली, कॉल्स भी आती, मैसेज भी आते हैं कि पंडित जी नेहा से बहुत प्यार है, नेहा का वसीकरण कर दो। हम लोग ये काम नहीं करते, ना ही प्रमोट करते हैं, ठीक है। सो क्या है कि मेरा मैसेज है आप सभी को जो ये देख रहे हैं कि बहुत रेयर है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हो और आपके मन का भ्रम है, ये ज़्यादा पॉसिबल है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ खुद लें, इन सब चीज़ों को ना खोजें तो बेहतर है,
बिल्कुल।
और अगर कुछ सच में हो भी जाता है तो जो एक्सपर्ट हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनसे मिलें, उनसे सलाह लें।
मेरा कहना ये है, मेरा समझना ये है कि जो ये कर पाता है काला जादू भी, अगर कोई कर पाता है जेन्युइनली, तो वो नॉर्मल इंसान तो नहीं कर पाएगा। अगर किसी को किसी पर वश करना है तो वो एक साधारण इंसान नहीं कर पाएगा, उसके लिए उतनी शक्ति चाहिए, उतना स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए कि वो उसको अपने वश में कर ले। और उस तरह के स्पिरिचुअल लोग आज इस दुनिया में नहीं है जो किसी को अपने वश में कर सके।
वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे,
बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, सोशल मीडिया पे आपको नहीं मिलेंगे।
यस,
तो ये है।
सो नील जी, अभी हम रैपिड फायर राउंड करेंगे, मैं एक शब्द बोलूंगा आपसे,
ठीक है,
और आपके मन में जो भी पहला थॉट आया या सेंटेंस आया वो बोलिएगा, ठीक है। प्रेत
होते हैं,
भूत
शायद होते होंगे,
मयूंग
बर्थ प्लेस ऑफ ब्लैक मैजिक,
यक्षिणी
मेरी किताबें सबने पढ़नी चाहिए
ये अच्छा था, ये ब्लैक मैजिक
पता नहीं, बहुत ही ग्रे एरिया है।
पिशाच,
वो भी मेरी किताब है, वो यक्षिणी के बाद वो पढ़ लो।
भानगढ़ का किला।
झूठ, उसमें कोई हॉन्टिंग नहीं है।
सो एक अब हम पॉडकास्ट के एंड में आ गए हैं और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप भूत भगाते हैं?
नहीं, मैं भूत नहीं भगाता, मैं भूत आकर्षित करता हूँ।
थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और इतनी सारी कहानियाँ सुनाने के लिए।
थैंक यू, बहुत मज़ा आया और शायद आपके ऑडियंस को भी कुछ अच्छा सुनने मिला हो।
राधे राधे।
थैंक यू।